ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने सरकार विरुद्ध फैलाई गई गलतफहमियों से प्रभावित हुए बिना मिशन पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ने के लिए एमाले सांसदों को किया निर्देश। देश में पत्रकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में भूमिका निभानी चाहिए, राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने दिया जोर। आंदोलनरत शिक्षकों का मांग के संबंध में सरकार और शिक्षक महासंघ बीच हुई वार्ता और ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के अंत्येष्टि के लिए विश्व के नेता तथा अनुयायी सेंट पीटर्स स्क्वायर में हुई सभा। प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने सरकार के खिलाफ फैलाई गई अफवाह के पीछे नहीं लगकर अपने मिशन पर केंद्रित होने के लिए एमाले सांसदों को निर्देश किया है। आज नेकपा एमाले संसदीय दल के बैठक में उन्होंने नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देवा थाईलैंड से लौटने के बाद सरकार गिर जाएगी के अफवाह फैलाने वाले लोग अब चुप हो गए हैं। अमेरिकी सरकार के साथ हुए समझौता और दोनों देशों के संसद के पारित मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी अमेरिकी पक्ष से बंद किए जाने के संदर्भ पर प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि अब नेपाल अपने देश के विकास औरों के आस पर न होकर खुद करने के लिए तैयार है। एमाले मिशन 2024 मार्फत मजबूत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में रूपांतरण होने जा रहा है, इसलिए आंतरिक एकता और पारस्परिक सहकार्य में जुटने पर उन्होंने जोर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि बुद्ध का दिखाया हुआ शांति के मार्ग को विश्वभर में फैलाने का समय आ गया है। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी में आज से शुरू हुए चौथी एशियाली बौद्ध सांस्कृतिक महोत्सव और गोष्ठी का उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि लुम्बिनी बुद्ध दर्शन का भूमि मात्र न होकर बुद्ध दर्शन का उद्गम स्थल है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि बुद्ध के संदेश से ही विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाने में मदद पहुंचा रहा है। गोष्ठी में बौद्ध संस्कृति, चीनिया संस्कृति, कला, परंपरागत बौद्ध चिकित्सा तथा बौद्ध शिक्षा पर केंद्रित होकर 40 कार्यपत्र प्रस्तुत की जाएगी। यह जानकारी गोष्ठी के संयोजक डॉ सागर न्यूपाने ने दी। बता दें कि प्रधानमंत्री ओली ने आज ही लुम्बिनी में निर्माण किए गए लिटिल बुद्ध के मूर्ति का भी अनावरण किया। सरकार और नेपाल शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि बीच आज शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय में शिक्षक के मांग के संबंध में वार्ता हुई है। बैठक में शिक्षा के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग के संबंध में नवनियुक्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री रघुजी पंत को जानकारी कराया। बैठक के बाद नेपाल शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी ने कहा कि पुनः विचार विमर्श और वार्ता करने की सहमति हुई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि पत्रकारिता क्षेत्र से देश में कुछ नहीं होने के भाष्य को खत्म करते हुए कुछ किया जा रहा है के रास्ते पर ले जाना होगा। आज काठमांडू में आयोजित नागरिक सम्मान कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि सजग प्रेस ने सदैव सही और सत्य सूचना प्रवाह करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोकप्रियतावाद हावी है और सिर्फ प्रशंसा खोजने का प्रवृत्ति बढ़ते गया है तो सत्य का पता नहीं चलेगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि जैसे लोकतंत्र बिना स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ पत्रकारिता संभव नहीं है, वैसे ही स्वतंत्र प्रेस बिना लोकतंत्र का परिकल्पना भी नहीं किया जा सकता है। अछाम के प्रमुख व्यापारी केंद्र साफी बगर हाट बाजार में आज सुबह भीषण आग लगी में 10 दुकान पूर्ण रूप से जलकर नष्ट हो चुका है। सुबह साफे बगर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 स्थित शुभेक्षा होटल से शुरू हुए आगलगी में आसपास के सभी दुकानों में आग के लपेटे में आने के कारण बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। आगलगी पश्चात स्थानीय बासिंदा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी के सहकार्य में आग को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया गया था। लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश के प्रेषण अस्पताल के रूप में रहे भेरी अस्पताल का ओपीडी और लैब सेवा दो दिनों के लिए बंद रहेगी। आज हुए आगलागी से ओपीडी भवन में क्षति पहुंचाने के कारण कल और परसों ओपीडी सेवा बंद किया गया है। ये जानकारी अस्पताल के प्रमुख मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ निराजन सुवेदी ने दी। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री तीर्थराम डंगोल का पार्थिव शरीर नेवारी परंपरा अनुसार आज टेकू दोभान स्थित चिंतामणि घाट पर अंत्येष्टि किया गया है। अंत्येष्टि में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता, करीबी और शुभेच्छुकों का घना उपस्थिति था। लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर और किडनी का इलाज करा रहे नेता डंगोल का कल रात 77 वर्ष के उम्र में शीनामंगल स्थित केएमसी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ था। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने कहा कि संविधान संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र समावेशी और समानुपातिक व्यवस्था को संस्थागत करना आवश्यक है। आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र सिन्धुपाल्चोक काठमाण्डू सम्पर्क समन्वय समिति की दूसरी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी शहीद, लापता परिवार, विकलांगता हुए व्यक्तियों के पक्ष में हमेशा रहेगी। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा ने कहा कि नेपाल सदैव आतंकवाद के विपक्ष में है और किसी भी प्रकृति के आतंकवाद का कड़ा शब्दों में निंदा करता है। भारत के कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकारी हमला में पड़के जान गंवाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए नेपाल स्थित भारतीय दूतावास द्वारा आज काठमांडू में आयोजित सभा में उन्होंने ये बात कही। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी का निष्ठा, त्याग और जीवन शैली से सभी को पाठ सीखना चाहिए। आज 26वें मनमोहन स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सच्चे साम्यवादी के रूप में नेता अधिकारी ने अवलंबन किए मार्ग को सभी को आत्मसात करना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार समारोह भारतीय समयानुसार आज दोपहर शुरू हुआ था। सेंट पीटर बेसिलिका के सामने प्रतिष्ठित बारोक प्लाजा उनका अंतिम संस्कार हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। वेटिकन अधिकारियों के अनुसार पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के लिए लगभग 2 लाख लोग वेटिकन पहुंचे थे, साथ ही 100 से अधिक प्रतिनिधि मंडल एक साथ आए थे। इस गंभीर और मार्मिक समारोह की अध्यक्षता कार्डिनल जियोवानी बतिस्ता ने की थी, जिसके लगभग 250 कार्डिनल, पार्टियार्क, आर्क बिशप, बिशप, पुजारी और धर्मनिष्ठ धार्मिक शामिल हुए। कार्डिनल रे ने कहा, पनी कमजोरी और अंतिम समय में पीड़ा के बावजूद पोप फ्रांसिस ने अपने सांसारिक जीवन के अंतिम दिन तक आत्मसमर्पण के इस मार्ग पर चलना चुना। हमारे पास उनकी जो अंतिम छवि है, जो हमारी स्मृति में अंकित रहेगी, वह इस रविवार की ही जब पोप फ्रांसिस अपने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद सेंट पीटर वेसिलिका की बालकनी से हमें अपना आशीर्वाद देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में चल रहे युद्धों, उनकी अमानवीय भाव्य भयावहताओं को और अग्निनत मौतों और विनाश के खिलाफ पोप फ्रांसिस ने लगातार अपनी आवाज उठाई और शांति की अपील की थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने सरकार विरुद्ध फैलाई गई गलतफहमियों से प्रभावित हुए बिना मिशन पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ने के लिए एमाले सांसदों को किया निर्देश। देश में पत्रकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में भूमिका निभानी चाहिए, राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने दिया जोर। आंदोलनरत शिक्षकों का मांग के संबंध में सरकार और शिक्षक महासंघ बीच हुई वार्ता। और ईसाई धर्मगुरू पोप फ्रांसिस के अंत्येष्टि के लिए विश्व के नेता तथा अनुयायी सेंट पीटर्स स्क्वायर में हुई सभा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।